अब आगे, प्रियंका का बॉयफ्रेंड मॉल में पहुंच चुका था। वो चारों ओर अपनी आंखें घुमा घुमा कर देख रहा था, लेकिन उसे अभी तक अरमान सिंघानिया की पत्नी दिखाई नहीं दी थी। इस वजह से वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया था। वहीं दूसरी ओर अरमान का पूरा परिवार वहां मौजूद था, लेकिन आस्था उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। आस्था की फोटो उसके पास थी। प्रियंका की शादी में प्रियंका ने अपने फोन से आस्था के साथ सेल्फी ली थी, इसलिए वो आस्था को अच्छे से पहचानता था। वो इंतजार करते हुए एक घंटे से ज्यादा समय बिता चुका था। जब वो इरिटेट होकर वहां से जाने के बारे में सोचने लगा, तभी उसे आस्था और अरमान दिखाई दिए। आस्था को देखकर वो एक पल में उसकी खूबसूरती में पूरी तरह खो गया और सोचने लगा कि अरमान सिंघानिया के तो हाथों में लड्डू ही लड्डू हैं। कितनी खूबसूरत पत्नी इसको मिली है, काश एक रात इस लड़की के साथ मिल जाए। कहीं न कहीं ये सोचते हुए आस्था को देखते ही उसकी नीयत खराब होने लगी और मन ही मन में उसने निर्णय ले लिया था कि आस्था का अपहरण करने के बाद वो सबसे पहले सारी हदें पार करेगा। इसी उम्मीद के साथ वो आस्था को किडनैप करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वहीं दूसरी ओर आस्था को वहां देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। सुमित ने भी सबको ज्वाइन कर लिया था और साथ ही उसने आकाश के द्वारा रश्मि को राधिका से फोन करवा दिया था कि वो राधिका को भी मॉल में बुला ले। उसे जो कुछ खरीदना होगा वो भी खरीद लेगी। आखिरकार वे लोग पूरे 15 दिनों के लिए गांव जा रहे थे, तो उसी के अनुसार उन्हें वहां पर जो भी सामान अपनी जरूरत के हिसाब से चाहिए था वो सब सामान वहां से खरीद सकते थे। ये सोचते हुए रश्मि ने भी राधिका को फोन कर दिया था और राधिका तो खुद ही अब मॉल आना चाहती थी। रश्मि के फोन आने के बाद वो फटाफट से मॉल के लिए रवाना हो गए थे। वहीं दूसरी ओर सुमित आस्था के आने पर सभी लोग अब एक बार फिर से जोर शोर से अपनी शॉपिंग करने लगे थे। आस्था ने अपने सभी गांव के दोस्तों के लिए बहुत सारे सामान खरीदने शुरू कर दिए। वहीं अरमान बीच बीच में आस्था को घूर कर देख रहा था, क्योंकि आस्था जिस खुशी से अपने दोस्तों के लिए सामान खरीद रही थी वो बात उसे काफी ज्यादा बुरी लग रही थी और वो जलन महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था कि आज तक उसकी पत्नी ने उसके लिए कुछ भी नहीं खरीदा है और अपने दोस्तों के लिए देखो किस तरह से उत्साह में सामान खरीद रही है। कहीं ना कहीं अरमान ये सब देखकर थोड़ा सा इरिटेट भी हो रहा था और ज्यादा देर वो आस्था को इस तरह से किसी और के लिए सामान खरीदते हुए नहीं देख पाया। अचानक उसकी नज़र लड़कियों के खूबसूरत कपड़ों के सेक्शन पर गई, जहां पर उसे राजवीर चिंदल दिखाई दिया। राजवीर को वहां देखकर अरमान की आंखों में चमक आ गई। फिर उसने दादाजी की ओर देखा। वो अच्छी तरह जानता था कि उसके दादाजी कभी नहीं चाहते थे कि अरमान राजवीर से मिले, लेकिन अरमान को राजवीर से एक अलग ही तरह का लगाव था। बचपन से ही वो राजवीर का बहुत आदर करता था, उसे बेहद मान सम्मान देता था, इसलिए वो एक नज़र सबकी ओर देखता हुआ चुपके चुपके सबको शॉपिंग में मगन देखकर जल्दी ही राजवीर जिंदल से मिलने के लिए जा पहुंचा। वहीं अविनाश उस वक्त एंजल के साथ शॉपिंग मॉल में था, क्योंकि एंजल के साथ उसका कमिटमेंट था कि वो अविनाश के हर वक्त साथ रहेगी, क्योंकि वो उसकी सेक्रेटरी थी। हालांकि आस्था को एंजल पसंद नहीं थी, लेकिन अविनाश इतनी जल्दी एंजल को फायर नहीं कर सकता था, क्योंकि एंजल उसके सारे शेड्यूल, सारी चीजें अच्छी तरह से जानती थी और पिछले 5 सालों से वो अविनाश के लिए काम कर रही थी। अब उसकी मजबूरी थी कि वो एंजल को अपने साथ रखने वाला था, वरना जब से आस्था ने एंजल को नापसंद किया था उसका इरादा हो गया था कि वो एंजल को अपने साथ नहीं रखेगा। अविनाश की बेरुखी देखकर एंजल ने भी जल्दी निर्णय लिया था कि वो अपने रिश्ते आस्था से और साथ साथ अविनाश से सुधारेगी। जिस बात की जो गलती उसने नहीं की उसकी उसे सजा मिल रही है, उसके बारे में वो उन्हें बताएगी। अविनाश एंजल से बात नहीं कर रहा था, उसकी तरफ से उसका व्यवहार उखड़ा उखड़ा सा था। क्योंकि एंजल अविनाश के साथ थी तो अविनाश एंजल को साथ देखकर इरिटेट हो गया, इसीलिए वो भी अब सबको शॉपिंग करते हुए छोड़कर वहां से आगे चला गया। वहीं दूसरी ओर जैसे ही राजवीर जिंदल ने अपने सामने अरमान को देखा तो बड़ी खुशी से उसने उसे गले से लगा लिया, क्योंकि अपनी पत्नी के बाद अगर वो किसी को पसंद करता था तो वो वाकई अरमान को पसंद करता था, क्योंकि अरमान बिल्कुल उसके जैसा था। अरमान उसके नक्शे कदम पर चलता था। बचपन में जब उसने अरमान को बड़ी ही बेरहमी से एक छोटे से 15 साल के बच्चे का खून करते हुए देखा था तो राजवीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, क्योंकि जिस वक्त अरमान वो खून कर रहा था राजवीर वहीं मौजूद था। अरमान में उसे खुद का स्वरूप दिखाई दिया था। तब राजवीर ने अरमान की ओर देखकर कहा, चेले तुम मुझे यहाँ मिलोगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन फिलहाल तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ क्योंकि मेरी पत्नी इस वक्त बहुत ज्यादा नाराज है और मैं उसके लिए शॉपिंग करने आया हूँ। मैं फटाफट से ऑलरेडी शॉपिंग कम्प्लीट कर चुका हूँ, मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं तुमसे फिर कभी किसी दिन फुर्सत से मिलूंगा। अरमान राजवीर की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और इत्मीनान से मुस्कुरा कर बोला, डोंट वरी सर, आप जा सकते हैं, वैसे भी पत्नी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अरमान ने बड़े ही गहरे अंदाज में ये बात कही थी और राजवीर को ये बात अंदर तक लुभा गई और फटाफट से वो मुस्कुराता हुआ वहां से जाने लगा। लेकिन जैसे ही राजवीर कपड़ों वाले क्षेत्र से बाहर की तरफ जा रहा था, वो किसी से बुरी तरह से टकरा गया और उसके सारे थैले नीचे गिर गए। अब तो राजवीर के माथे पर गुस्से की लकीरें बढ़ चुकी थीं। वो जिस इंसान से टकराया था वो कोई और नहीं बल्कि अविनाश रघुवंशी था। अविनाश ने उसकी शक्ल नहीं देखी थी, उसका ध्यान उस वक्त राजवीर के हाथों में पड़े हुए बैग पर था, इसलिए वो फटाफट से सबसे पहले वे बैग उठाते हुए बोला, आई एम सो। अभी वो सॉरी पूरा भी नहीं बोल पाया था कि तभी उसकी नजर राजवीर के चेहरे पर पड़ती है। अब उसके चेहरे को देखने के बाद अविनाश के तो खून जम गया था, उसकी आंखें एकदम से ब्लड शॉट होने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने सीधे सीधे राजवीर यानी अपनी मौत को देख लिया हो, क्योंकि जिस वक्त राजवीर ने उसकी माँ की जान ली थी अविनाश ने उसे बहुत अच्छे से देखा था। राजवीर बड़ी बुरी तरह से खून करता था, जब उसकी माँ का गला काट रहा था उसकी माँ के निकले हुए गले से खून को उसने अपने पूरे चेहरे पर मल लिया था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। अब अविनाश एक तरफ तो गुस्से की आग में दहक रहा था, साथ ही साथ बचपन का वो डर जो राजवीर की शक्ल देखकर उसके दिलो दिमाग में बैठ गया था वो भी आज तक नहीं निकला था। वहीं राजवीर जो कि जल्दी में था उसने अविनाश पर एक सरसरी सी नजर डाली और अपने थैले लेकर वो आगे बढ़ने लगा। अविनाश तो एक जगह बर्फ के जैसे जम चुका था। दूसरी ओर आस्था ने देखा कि अरमान काफी देर से उसे नहीं मिला है, साथ ही साथ अविनाश भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन्हें देखने के चक्कर में आस्था भी अब शॉपिंग करने की बजाय थोड़ा सा जैसे ही बाहर आने लगी उसकी नजर अविनाश पर पड़ती है। अविनाश एक जगह खड़ा हुआ था और आस्था मुस्कुराकर अविनाश की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी आस्था की नजर मॉल से ठीक नीचे एस्केलेटर से जाते हुए राजवीर जिंदल पर पड़ गई। अब तो आस्था के भी पैर एक जगह जम गए थे और वो घूरकर राजवीर को देखने लगी। अब न जाने उस वक्त आस्था के अंदर हिम्मत कहां से आ गई, उसका खून पूरी तरह से उबलने लगा था, इसलिए जल्दी ही आस्था बिना कुछ सोचे समझे राजवीर के पीछे पीछे जाने लगी। वहीं अविनाश भी अब खुद को रोक नहीं पाया, उसने अपने डर को साइड में रखकर उसने भी अब राजवीर की जान लेने का फैसला कर लिया था। आस्था के दिमाग में यही बात चल रही थी कि वो आज गांव निकल जाएगी,
क्यों ना गांव जाने से पहले वो राजवीर की जान ले, तो इसी सोच के साथ वो जल्दी ही उसके पीछे पीछे निकल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर राघव जो बहुत देर से आस्था पर नजर रख रहा था, लास्ट टाइम उसने आस्था को चेंजिंग रूम में जाते हुए देखा था, लेकिन आस्था चेंजिंग रूम में जाने के बजाय पहले अपनी ड्रेस से अरमान को दिखाना चाहती थी, तो वो उसे ढूंढने के लिए निकली थी, लेकिन अब तो वो राजवीर के पीछे चली गई थी। वहीं चेंजिंग रूम का दरवाज़ा बंद देखकर राघव को लगा कि ज़रूर अब आस्था चेंजिंग रूम में होगी, तो मौका देखकर वो वहां पहुंच चुका था। उसने वैसे भी मॉल में काम करने वाले लड़के का गेटअप लिया हुआ था, साथ ही साथ उसने कुछ लोगों को पैसे खिलाकर ये कहा था कि जब तक वो किडनैपिंग नहीं कर लेता तब तक के लिए उसने CCTV को भी बंद करने का ऑर्डर दिया था, तो उसकी तरफ से उसके हिसाब से उसका पूरा प्लान तैयार था। साथ ही साथ वो क्लोरोफॉर्म की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक रुमाल लेकर खड़ा हुआ था। अब उसे बस जल्द से जल्द आस्था के बाहर निकलने का इंतज़ार था, वह अब उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। राघव की नज़र चारों ओर अच्छी तरह से थी और जैसे ही आस्था चेंजिंग रूम से बाहर निकली अचानक से उसने अपने साथ में लाया हुआ क्लोरोफॉर्म आस्था के मुंह पर रख दिया। हालांकि वो आस्था को बेहोश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी निगाह आस्था के बजाय सिर्फ और सिर्फ चारों ओर थी, और जब उसे लगा कि आस्था बेहोश हो गई है उसने फटाफट से एक बड़े से काले रंग के पाली बैग निकाला जो आस्था के साइज का ही था। उसे फटाफट से उसने उसमें पैक कर लिया और उसे अच्छे से कवर अप करके गोद में ले लिया। इस तरह उसने कुछ इस तरह का सीन क्रिएट किया था कि ऐसा लग रहा था मानो राघव कुछ ज्यादा ही बड़ी शॉपिंग करके वहां से निकल रहा हो, तो किसी को उसे पर कोई खास शक नहीं हो रहा था। ऊपर से वो मॉल में काम करने वाले लड़के के वेश में था, तो वो आस्था को गोद में उठाकर जाने लगा और मन मन में सोच रहा था, दिखने में इतनी ज्यादा दुबली पतली सी लग रही थी लेकिन वजन तो देखो कितना ज्यादा है। चलो फिलहाल कुछ भी कहो, आज तो मजा ही आ जाएगा। और जल्दी ही सबकी नज़रों से बचते बचते बड़े ही आसान तरीके से वो मॉल से बाहर निकल चुका था और उसके कुछ दोस्त ऑलरेडी गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहे थे। और फटाफट से उसने अपने दोस्त को हाई फाइव दिया और शातिर मुस्कान लाते हुए बोला कि आज तो तुम लोगों को मज़ा ही आ जाएगा, चलो मेरे साथ। ऐसा बोलकर जल्दी ही वो आस्था को लेकर अपने फार्म हाउस के लिए रवाना हो चुका था। वहीं दूसरी ओर आस्था ने देखा कि राजवीर जिंदल इस वक्त एक काले रंग की कार में बैठकर कहीं जा रहा था। आस्था को कुछ समझ में नहीं आया कि वो उसका पीछा करे तो करे कैसे। जल्दी ही उसकी नज़र एक ऑटो रिक्शा पर पड़ी, वो जाकर तुरंत उसमें बैठ गई। इस वक्त आस्था के सर पर सिर्फ और सिर्फ राजवीर जिंदल को मारने का भूत सवार था, इसलिए जल्द से जल्द उसे पकड़कर उसका पीछा करना चाहती थी और उसकी जान लेना चाहती थी। वहीं अविनाश भी अब राजवीर जिंदल को मारने के लिए अपनी कार में बैठकर रवाना हो चुका था।